सोन्वेषमाणः शरणं
सोन्वेषमाणः शरणं
अभ्राम पृथिवीं प्रभुः
अभ्राम पृथिवीं प्रभुः
नानुरूपं यदा विन्दत्
नानुरूपं यदा विन्दत्
अभूत्स
विमना इव
सोन्वेषमाणः शरणं
सोन्वेषमाणः शरणं
बभ्राम पृथिवीं प्रभुः
बभ्राम पृथिवीं प्रभुः
नानुरूपं यदा विन्दत्
नानुरूपं यदा विन्दत्
अभूत्स विमना इव
अभूत्स विमना इव
सोन्वेषमाणः शरणं
सोन्वेषमाणः शरणं
बभ्राम पृथिवीं प्रभुः
बभ्राम पृथिवीं प्रभुः
नानुरूपं यदा विन्दत्
नानुरूपं यदा विन्दत्
अभूत्स विमना इव
अभूत्स विमना इव
सोन्वेषमान शरणं
सोन्वेषमानः शरणं
बभ्राम पृथिवीं प्रभुः
बभ्राम पृथिवीं प्रभुः
नानुरूपं यदा विन्दत्
नानुरूपं यदा विन्दत्
अभूत्स विमना इव
अभूत्स विमना इव
सोन्वेषमानः
शरणं
बभ्राम पृथिवीं प्रभुः
बभ्राम पृथिवीं प्रभुः
नानुरूपं यदा विन्दत्
नानुरूपं यदा विन्दत्
अभूत्स विमना इव
अभूत्स विमना इव
सोन्वेषमानः
शरणं
बभ्राम पृथिवीं प्रभुः
बभ्राम पृथिवीं प्रभुः
नानुरूपं यदा विन्दत् अभूत्स विमना इव
अभूत्स विमना इव
सः वह राजा पुरंजन
अन्वेषमानः
खोजता हुआ शरणम
शरणम
आश्रय बभ्राम
बभ्राम
घुमा पृथ्वीम
संपूर्ण पृथ्वी लोक पर
प्रभु
स्वतंत्र स्वामी बनने के लिए
न
कभी नहीं
अनुरूपम
इच्छानुकूल
उपयुक्त यदा
जब
अविन्दत्
पासका
अभूत हुआ सह वह
विमुनाः
खिन्न
इव
सदृश तात्पर्य और अनुवाद श्रील प्रभुपाद अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद राजा पुरंजन अपने रहने के लिए उपयुक्त स्थान खोजने लगा और इस तरह वह सारा संसार घूम आया। फिर भी कड़ी दौड़ धूप के बाद भी उसे अपनी इच्छा के अनुकूल कोई स्थान नहीं मिला। अंत में वह अत्यंत खिन्न और निराश हो उठा। तात्पर्य लंबा था इसलिए कल आपने पहला भाग तात्पर्य का पढ़ा, आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। भगवत गीता में कहा गया है ईश्वरम रीत सर्दी ज्यादा हो गया
भगवत गीता में कहा गया है ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयशेर्जुन तिष्ठति मायां सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित हैं और उन सभी जीवों का निर्देशन कर रहा है जो माया रूपी यंत्र पर आरूढ़ है। जीवात्मा शरीर रूपी यंत्र द्वारा अनेक योनियों में से होकर न जाने कितने कितने लोकों में ले जाया जाता है। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जीवात्मा से पूछते हैं कि उसे क्यों इन शारीरिक यंत्रों द्वारा इतनी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ले जाया जा रहा है। उनका उपदेश है कि कृष्ण की शरण में जाने से माया की तरंगों को पार किया जा सकता है। जीव कृष्णदास ए विश्वास कर ले तो अर दुख नाए। जो ही कृष्ण से हमारा साक्षात्कार हो जाता है, भगवान आदेश देते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, डरो नहीं। भगवद्गीता 18:67। इस प्रकार हम तुरंत ही एक शरीर से दूसरे में और एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करने की झंझट से मुक्त हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोन भाग्यवान जीव। यदि कोई भ्रमण करता हुआ जीवात्मा इतना भाग्यशाली हुआ कि भक्तों की संगति कर सके और कृष्ण भावना भावित हो सके, तो वास्तव में यहीं से उसका असली जीवन प्रारंभ हो जाता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन सभी भटकती हुई जीवात्माओं को श्री कृष्ण की शरण में जाने का तथा इस प्रकार सुखी बनने का अवसर प्रदान करता है। इस श्लोक के विमना इव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस भौतिक जगत में स्वर्ग का राजा इंद्र भी चिंता से पूर्ण रहता है। जहां ब्रह्मा तक चिंतित हो, वहां इस लोक के सामान्य प्राणियों का क्या कहना। भगवद्गीता 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भी पुष्टि की हुई है, आ ब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्तिन अर्जुन। इस भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक तक ये सभी दुख के आगार हैं, जहां जन्म तथा मृत्यु बारंबार होते रहते हैं। इस जगत में जीवात्मा कभी संतुष्ट नहीं होता, यहाँ तक कि ब्रह्मा इंद्र या चंद्र का पद प्राप्त करके भी मनुष्य चिंतित रहता है, क्योंकि वह इस संसार को सुख का स्थान मानता है।
ओम ज्ञान किमिरामस्य
ज्ञानाक्षरशलाकया
तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णश्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनितिलामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम के 4वें स्कंद के 25वें अध्याय में इस समय प्रसंग ये चल रहा है कि नारद मुनि राजा प्राचीन बरहिषत के पास आए हैं। उनका नाम है वास्तव में बरहिषत, परंतु बहुत सालों से वो हैं, इसलिए उनका नाम प्राचीन बरहिषत हो गया। अभी राजा की विशेषता ये थी कि ये कर्मकांड में बहुत लिप्त थे और कर्मकांड के नियमों के अनुसार फिर वो पशु हत्या भी बहुत बड़े पैमाने पे करते थे। तो नारद मुनि तो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं और वो भी चाहते हैं कि सभी लोग कृष्ण भक्त बन जाएं। जो लोग नास्तिक वगैरह हैं वो तो है ही, परंतु ऐसे भी अनेक लोग होते हैं जो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत रहते हुए भी वेदों के वास्तविक मूल उद्देश्य को नहीं जानते हैं। वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्यः वेदांतकृत वेदविदेव चाहम। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है, शब्द भेद करके कौन बताएंगे? वेदैश्च सर्वे
सब वेदों
का अहम एव वेद्यः, क्या मतलब?
सब वेदों के द्वारा केवल मुझे ही जाना जा सकता है।
हाँ, तो अर्थात वेदों को जानने का अर्थ है भगवान कृष्ण। और आगे
वेदांत, वेदांत कृत, मैंने ही वेदों का रचना किया है।
वेदांत, वेदांत की रचना भी मैंने ही की है। और
वेदविद एव चाहम, और वेद को जानने वाला भी मैं ही हूँ।
हाँ, मैं भी वेदविद हूँ। विद मतलब विद्वान, जानना। तो वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ, वेदों के द्वारा मुझे जाना जाता है, और मैं भी वेदों को पूरी तरह से जानता हूँ। वेद और भगवान में अंतर नहीं है। तो ऐसे कई वैदिक सभ्यता के अनुयायी होते हैं जो इस बहुत ही महत्वपूर्ण मूल तत्व को नहीं जानते हैं। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर् व्यतितरिष्यति, फिर सदानंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। क्या अर्थ है इसका?
मोह कलिलम, जो मोह का जो अंधकार है या फिर जो कलमश है, यदा मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति, उस समय पे जब आप तीन गुणों से बाहर निकलेंगे तो बुद्धि उसके परे हो जाएगा। तदा गमता से निर्वेदम, और उस समय पे जो भी आप नहीं जानते हैं, और श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, जो भी आपने सुना है और जो सुनने लायक है, तीन गुणों के अंतर्गत उस सबसे ऊपर चले जाएंगे।
तो क्या तात्पर्य है इसका? बहुत अच्छा। श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च मतलब किन चीजों के सुनने की बात हो रही है?
कर्मकांड
के बारे में। यदा ते मोह कलिलम, ये क्या अर्थ है मोह कलिलम? मोह रूपी सघन वन है। तो ये कर्म कांड क्या है? इसी ब्रह्मांड के भीतर भ्रमण करते रहो, भ्रमण करते रहो, क्योंकि कर्म कांड के अनुसार ये कोई विचार नहीं है कि हमें संसार पार करके जाना है, मुक्त होना है जन्म मृत्यु के चक्र से, ये कर्म कांड में विचार नहीं है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर् व्यतितरिष्यति, तो ये सघन जंगल में ही अटके रहते हैं। तो संसार की तुलना कभी कभी जंगल से की जाती है, जो बहुत सघन है। सघन अर्थात इतना घना है कि व्यक्ति अंदर घूमते घूमते गुमराह हो जाता है। गुमराह अर्थात जाने ना आप क्या जानते हैं ना? गुमराह का क्या अर्थ है? पथ भ्रष्ट, उसको भूल जाता है। अच्छा, बचपन में आप कोई ऐसे उद्यान में गए होंगे जहाँ एक ऐसा स्थान है, आपको अंदर जाना है और फिर अंदर 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 आपको फिर बाहर से निकलना है, लेकिन अंदर रास्ता खो जाता है। उसको हिंदी में भूल भुलैया बोलते हैं। भूल भुलैया, कभी वो खेल भी होता है, आपको कलम लेके ऐसे बिना रुक के निकलना है। आप सब खेल चुके हैं। हाँ, कितने है भूल भुलैया, कौन नहीं जानते? हाथ ऊपर कीजिए, क्या चीज है भूल भुलैया? मराठी में क्या म्हणतात त्याला? भूल भुलैया म्हणतात। सगळे गेले लहानपणामध्ये, गेलेत की नाही सगळे? हाँ, आतमध्ये जातो आणि अडकून राहतो, बाहेर कसं याचं समजत नाही। इकडे गेलं तर थोड्या वेळानंतर भिंत येते, इकडे परत गेलं इकडे भिंत येते, इकडे जाऊ तिकडे जाऊ कुठे समजत नाही, फिरत असतो आम्ही तिकडे। हा, भूल भलैया, परंतु रास्ता है बाहर जाने के लिए, परंतु उसको पता नहीं है। तो इसी प्रकार से ये संसार एक भूल भुलैया है। भ्रमण करते रहे, भ्रमण कर रहे, घूम रहे, कितने जन्मों 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 से घूम रहे हैं और इतने अटक जाते उसमें कि हम भूल जाते हैं कि इसका भी बाहर जाने का रास्ता भी कोई है, जानते ही नहीं कि बाहर जाने का रास्ता का, वो भूल भुलैया में ही रह जाते हैं। तो ऐसे भ्रमण करना ही हमारा इतिहास है। जीव का इतिहास क्या है? भूल भुलैया में भ्रमण करते रहना, भ्रमण करते रहना। तो ये एक विडंबना है। तो यदि कभी कभी आपने ऐसे व्यक्ति को देखा है जो सड़क पे घूम रहा है और उसको आप पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, माइट नहीं चाल लो उसे ऐसे अस्तत कभी कभी लोग दे फिर अस्तत रस्ते पर तेना माहित नसत कुठे चाललो का चाललो फिरत असत। असं अनेकदा राजमार्गावर पण मी लोकांना बघितलंय। राजमार्ग म्हणजे मोठं मोठ्या रस्त्यावर एक शहरापासून दुसरे शहर जाताना मोठे मोठे जे रस्ते असतात, आणि कोणी माणूस असतो ते समजतं तो थोडा मानसिक दृष्टीने संतुलित नाही, त्याचं परिस्थिती बरोबर नाही आहे, असं चालत असतो चालत असतो कुठेतरी चालतोय। तर त्याला कोणी विचारलं कुठे चालला त्याला माहीत नाही। तर आमची परिस्थिती पण अशीच आहे या भौतिक जगामध्ये। भ्रमण करत राहिलो आम्ही, भ्रमण करत राहिलो, का आम्ही चाललोय, कुठे भ्रमण करत आहे, कशासाठी फिरत आहे आम्ही माहीत नाही। यदि हम लोग रेलगाडी में बैठेंगे कहीं जाने के लिए और हमारे सामने और एक कोई यात्री बैठा है और उसको हम पूछेंगे तुम्हें कुठे चल रहा है, वो माहित नहीं हो, गाड़ी बघितली आलून बसलो तो तुम्हें काय विचार करना त्याच्याबद्दल, थोड़ा वेड़ा है म्हणून असं विचार करणार ना कि वो ऐसे किसको मालूम नहीं कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है आ रहा है कि जा रहा है पता नहीं कुछ। तो उसी तरह से हमारी परिस्थिति ऐसे ही है, हम लोग ऐसे ही घूम रहे भटक रहे हैं, किसी को उद्देश्य पता नहीं है और घूमते घूमते उनको लगता है कि यार बस यही परिस्थिति सबसे अच्छी परिस्थिति है। और अलग अलग परिस्थितियों में हमें लगता है कि प्राप्य वस्तुएं कुछ है, यहाँ पे पृथ्वी लोक में रख के रखता है स्वर्ग लोक की प्राप्ति, ये सबसे ऊंचा है। तो जो लोग स्वर्ग लोक में रहते उनको लगता है ब्रह्मांड की प्राप्ति जो है सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार से हरेक परिस्थिति में जो व्यक्ति है उसको लगता है कि ये परिस्थिति ठीक है या तो फिर इससे अधिक हमें कुछ परिस्थिति चाहिए। इसके लिए हम लोग भ्रमण करते रहते हैं, परिश्रम करते हैं ऐसे कोई उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो कि हम मानते हैं कि हमारे लिए सुखप्रद होगा। परंतु श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि हमें ऐसे कोई कार्य करना चाहिए, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें कार्य करना चाहिए जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करने के बाद भी नहीं मिल सकता है। कौन सा श्लोक है ये?
तस्यैव हेतु प्रतीत कुविदो।
हाँ बहुत अच्छा।
न लभ्यते यद्भूतान् उपर्यतः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररम्भसा।
बहुत अच्छा। तो तस्यैव हेतोः प्रतीत कुविदः, तो क्या इसका शब्द भेद करके अर्थ समझाओ।
उस हेतु के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए कि बुद्धिमान व्यक्ति कोविदा जो जानने वाला है।
कोविद अर्थात कौन? कोविड ये बीमारी नहीं, कोविड तो कोरोना की बीमारी कोविड नहीं, ये कोविद द जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है कोविद, तो कोविद है जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए?
उस वस्तु के लिए प्रयत्न करना।
तस्य एव प्रयतेत, ऐसे चीज के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तस्यैव हेतो, हेतो अर्थात उद्देश्य, ऐसे उद्देश्य के लिए कोविद को निश्चित ही प्रयत्न करना चाहिए। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदः,
न लभ्यते यद् भ्रमताम् उपर्यथः,
न लभ्यते भ्रमताम्
उपर्यथः,
जो कि हमें ऊपर भी नीचे भी जाने के बाद भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो हमें ऐसे चीज, बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे चीज के लिए प्रयास करना चाहिए जो कि ब्रह्मांड में ऊपर जाने से नीचे जाने से भी प्राप्त नहीं हो सकता है। ऊपर अर्थात ब्रह्मलोक तक जाने से, ब्रह्मलोक, तपलोक, जनलोक, सत्यलोक और ये महरलोक, स्वर्गलोक, और नीचे के लोक भी रसातल, पाताल, इतने भी लोक हैं सब नीचे के, अतल, वितल, सुतल। तो ऐसे चीज के लिए प्रार्थना करना चाहिए जो कि जहां भी हम ब्रह्मांड में भ्रमण करें वो नहीं मिल सकता। हरे व्यक्ति अपने स्थिति से संतुष्ट नहीं होता, वो सोचता है दूसरी जगह घास हरा भरा है, वहां जाए तो मेरी परिस्थिति अच्छी हो जाएगी। परंतु श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि हमें ऐसे प्रयास करना चाहिए उस उद्देश्य के लिए कि चाहे हम अमेरिका जाए, शहर में जाए, गांव में रहे, प्राप्त नहीं होगा। तो कौन सी चीज है? साधारणतः लोग ऐसे ही सोचते हैं, हम अमेरिका जाएंगे, बड़े शहर में जाएंगे, हम चांद पे जाएंगे, स्वर्गलोक में जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। परंतु भागवत कहता है नहीं, केवल इधर उधर भ्रमण करने की बात मत सोचो, क्योंकि केवल भ्रमण करते रहोगे तो उसमें भी वो सबसे जो ऊंचा उद्देश्य है वो प्राप्त नहीं होगा। तो कौन सा वो उद्देश्य है आगे फिर बताओ श्लोक।
लभ्यते दुःख वदन्यतः सुखम्,
न लभ्यते तल्लभ्यते दुःखवत् अन्यतः सुखम्,
कालेन सर्वत्र गभीर रम्हसा,
कालेन सर्वत्र गभीर रम्हसा। क्या अर्थ है इसका?
जिस प्रकार से दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है, उसी तरह से काल के अनुसार हमको जो प्राप्त है वो मिलता ही है, इसलिए उन चीजों के
तल लभ्यते
दुखवत
अन्यतः सुखम। वैसे काल के प्रभाव से, कालेन सर्वत्र गभीर रम्हसा, तो काल चक्र में हम सब फंसे हुए हैं, तो काल के अनुसार हर एक व्यक्ति को दुख भी मिलेगा और सुख भी मिलेगा, है ना? तो इसलिए सुख और दुख ये तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार, काल प्रकृति के अनुसार मिलता ही रहेगा। तो केवल सुख को पाने के लिए और दुख से बचने के लिए क्यों हमें हमारा मूल्यवान मनुष्य जीवन व्यर्थ गंवाना चाहिए? क्यों केवल इधर उधर भ्रमण करना चाहिए? हमको क्या करना चाहिए? उस ऊंचे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए जो सुख दुख के परे है, जो काल और प्रकृति के परे है, जो अलग अलग स्थानों में भी जाके नहीं पाया जा सकता है। तो वो क्या है? इस तो कृष्ण भावनामृत अंततः। तो राजा प्राचीन परिषद ऐसे यदा ते मोह कलिलम, तो इस वन रूपी जंगल में, सब भौतिक सृष्टि में भटक गए हैं। और कौन सा भगवद गीता का श्लोक है इसी संबंध में? उसी साथ में दो तीन श्लोक है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति, ये मैंने अभी बताया, उसके और साथ में श्रुति प्रतिपन्नाते यदा स्थास्य से निश्चला
तदा गमता से समाधावचला बुद्धि,
समाधावचला बुद्धि दूसरे अध्याय में देखो, खोल के देखो, दूसरे अध्याय भगवत गीता, ये दो तीन श्लोक है, बहुत जरूरी आवश्यक है। और भगवान क्या कहते हैं, तीन वेदों के परे जाना है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। ये संपूर्ण सृष्टि तीन गुणों के अधीन है, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए हे अर्जुन कि तुम इससे परे हो जाओ। तो ये कर्म कांड भी तीन गुणों के अधीन ही है। तो ब्रजेश कृष्ण कौन से श्लोक नहीं है उसमें, 53। ये खास करके कर्म कांड के लिए ये श्लोक बताए गए।
श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धे तथा युगम अवाप्स्यसि।
अनुवाद,
जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी।
उसके पहले
यदा ते मोह कलिलम कर्मजम बुद्धि।
तो ये दो श्लोक, नंबर
52
बावन 53, दूसरे अध्याय में, इनमें भगवान श्री कृष्ण कर्मकांडीय कार्यों में अटकने के बारे में चेतावनी देते हैं कि अर्जुन तुम इस कर्मकांडीय कार्यों में मत पड़ो, इससे परे तुम्हें जाना है, क्योंकि कर्मकांडीय कार्य वेदों के अंतर्गत हैं, फिर भी तीन गुणों के परे नहीं है, तुम इसमें अटक जाओगे, ये भी भूल भुलैया है, भ्रमण करते रहोगे, इसलिए इससे परे आ जाओ। परे आके अंततः भगवत गीता में भगवान कहते हैं तुम मेरे भक्ति करो। तो भगवान के भक्त भी भगवान की वाणी को ही दोहराते हैं, कोई भिन्न बात नहीं कहते हैं। तो प्रभुपाद जी अक्सर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं हम भी वही कहते हैं। भगवान कहते हैं मेरे शरण में आ जाओ, हम भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण के शरण में जाओ। इसलिए हमारे कहने में भगवान कृष्ण के कहने में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हम जो भी कह रहे हैं भगवान की वाणी को ही दोहरा रहे हैं। तो यहाँ पर नारद मुनि भी भगवान की वाणी को दोहरा रहे हैं राजा प्राचीन परिषद के सामने कि हे राजा, तुम इतने कर्मकांड में अटके हुए हो और कर्मकांड के लिए तुमने इतने पशुओं की हत्या की, अब आगे चल के तुम्हारी दशा क्या होगी, क्योंकि तुमने इतना कष्ट दिया है इन प्राणियों को, तो ये प्राणी भी आगे चल के बदला लेंगे कर्म सिद्धांत के अनुसार। तुमने उनको कष्ट दिया है, वो आगे चल के तुमको कष्ट देंगे जब वो मनुष्य बन जाएंगे और तुम पशु बन जाओगे। मांसह, एक कौन जानते हैं ना, ये मांस शब्द कहते हैं ना, मांसाहारी मांस, ये मांस शब्द का ये आया कहां से,
मांसह
अर्थात
माम और सह
वो। तो क्या तात्पर्य इसका,
तो अभी तो मैं और वो, तो मैं अभी उसको अगर कष्ट दे रहा हूँ तो वो मैं बनूंगा और मैं वो बनेगा।
माम सह, मैं भी तुम, मैं भी वो बन जाऊंगा। मैं अभी तुम्हें मार रहा हूँ हे प्राणी, लेकिन ये जान लो कि आगे चल के हमारे स्थानों में परिवर्तन होगा, फिर मैं जानवर बनूंगा, तुम मनुष्य बनोगे, तुम मेरी हत्या करोगे। इसलिए शब्द मांस बोलते हैं ना, मांस मांसाहारी, ये मांस इससे आता है, मांसह तो कर्मकांड के अनुसार ये बताया जाता है कि जब पशु की हत्या करनी भी है मांसह, तो व्यक्ति बोल बोल के एक बार सोचेगा कि अरे ये काय बोलता है, मैं जनावराची हत्या करत आहे आणि मी सांगत आहे त्याला आता मी तुझी हत्या करत आहे पण भविष्यामध्ये तू माझी हत्या करणार, तू जनावर आहेस आता आणि मी मनुष्य आहे परंतु भविष्यामध्ये मी जनावर होऊन जाणार आणि तू मनुष्य होणार आहेस, त्यावेळी तू माझी हत्या करणार आहेस.
श्लोक आहे प्राणिनाम मृत्यु भीरुनाम मांसम चर्म प्रसेविकाम पूरयित्वा ध्रुवम याति नरकम पाप मानवः.
बहुत अच्छा, तो क्या उसका शब्द भेद?
जो प्राणी मृत्यु से डर रहे हैं उनको हम मार के मृत्यु भीरुनाम मांसम चर्म प्रसेविकाम मांस को मेरे चर्म प्रसेविकाम यानी पेट में उसको भर रहा हूँ, तो पूरयित्वा उसको पूर्ण करता हूँ, ध्रुवम याति उस वो व्यक्ति अवश्य ही जाता है नरकम, ऐसे पापी मानो नरक में जाता है.
तो ये मांस के खाने के बारे में है, है ना, नरक में जाना, परंतु आगे चल के नरक की यातना समाप्त करने के बाद व्यक्ति फिर से पृथ्वी पे आएगा, पृथ्वी के जानवरों की योनि को प्राप्त करेगा, है कि नहीं? जब मनुष्य योनि में रह के पाप करता है, पाप कर 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 के इतना भारी पाप का बोझ हो जाता है कि वो नरक लोक में जाता है, नरक लोक में बहुत लंबे समय तक यातनाओं को सहन करता है और फिर ऊपर आ जाता है, थोड़ा कुछ पाप बच जाता है, तो फिर भी उन पापों का फल सहन करने के लिए उसको जानवरों की योनि से ऊपर उठना पड़ता है. तो जब वो जानवर की योनि प्राप्त करता है तब कोई ना कोई शिकारी आएगा, कोई कसाई आएगा काटने के लिए. तो यही बात बताई गई है. अभी वारंवार बोलतो आम्ही, बोलायला पाहिजे, जे लोक हत्या करतात ना त्यांनी बोललं पाहिजे, म्हणजे डोक्यामध्ये शिरलं पाहिजे ते, मी आज तुझी हत्या करत आहे पण उद्या तू माझी हत्या करणार आहेस. तर असं बोलून 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 एकदा तरी विचार मनामध्ये येणार की अरे मी काय बोलत आहे, म्हणजे मी उद्या जनावर बनणार आहे आणि हा जनावर जो आहे तो मनुष्य होणं माझी हत्या करणार आहे, असं माझं कर्माचं परिणाम मला मिळणार, आता नको असं करायचं, बंद करणार नाही. तो ये उद्देश्य है कि बोल बोल के व्यक्ति को मन होश ठिकाने आ जाने चाहिए. तो नारद मुनि भी इसी उद्देश्य से राजा के पास आए हैं, उनको ये कर्मकांडीय कार्यों से हटाने के लिए, पशु हत्या से हटाने के लिए. और उनको उन्होंने एक दृश्य भी दिखाया. कैसा दृश्य दिखाया?
सब जानवर जो मरे हुए हैं वो आकाश में उनके लिए रुके हैं, मृत्यु के लिए.
तो नारद मुनि ने राजा प्राचीन भरिष्यत को अपनी योग शक्ति के द्वारा एक दृश्य दिखाया कि आसमान वो देख रहे हैं कि जितने भी प्राणियों की हत्या राजा ने की थी वो सारे प्राणी राह देख रहे हैं, जब हमें हम आएंगे और हम भी तुम्हारी हत्या करेंगे. तो अभी देखो बात मराठी में तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे ना, कळत पण वळत नाही असं म्हण आहे ना, काय आहे ते म्हण?
कळत पण वळत नाही.
कळत पण वळत नाही. तर ज्यावेळी लोकांना फार आसक्ती होऊन जाते कुठच्या कार्यामध्ये, त्यांना समजतं की आम्ही करू नये म्हणून, तरी ते कार्य सोडायला होत नाही, वळत नाही. कळतंय पण वळत नाही. दुर्योधनाची पण ती दशा झाली होती, कळत होत पण वळत नव्हतं. तो इसलिए कभी कभी ऐसे लोगों को उपदेश देने में कोई लाभ नहीं होता, जितना भी बोलेंगे वो एक कान से अंदर से बाहर निकल जाता है। फिर भी नारद मुनि बड़े कृपालु हैं, बहुत महान भक्त है, तो वो प्रयास कर रहे हैं और किसी न किसी तरह से ये न किए न प्रकार उनको समझाना है कि तुम ये बंद करो और तुम भगवान की भक्ति करो। तो इस उद्देश्य से अभी नारद मुनि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी बताने वाले हैं राजा प्राचीन बरिषद को। ये सत्य कहानी नहीं है परंतु एक कहानी है जिससे कि उपदेश ग्रहण किया जा सकता है, जिसमें कि उपमाएं बहुत हैं, दृष्टांत बहुत हैं, जिसके द्वारा राजा समझ पाए कि वास्तव में सत्य क्या है। वो कथा है राजा पुरंजन की। पुरंजन का अर्थ क्या है?
शरीर में रहने वाला जन।
पुर अर्थात शहर, शहर इस शरीर का की तुलना शहर से की गई है। और इसमें कितने द्वार हैं?
नौ
द्वार हैं। तो इस शरीर को नौ द्वारों वाला शहर बताया गया है, किला। तो भी राजा पुरंजन की बात अभी नारद मुनि उनको सुनाने वाले हैं, ये समझाने के लिए कि कर्मकांड छोड़ो, पशु हत्या छोड़ो, कृष्ण भक्ति करो। तो बहुत ही विस्तार में ये राजा पुरंजन की कथा बताए हैं और आप सभी आने वाले दिनों में ध्यान से इसको सुनना और बाद में अच्छी तरह से लिख के आप एक दूसरे को समझाना कि पुरंजन मतलब कौन है और ये द्वार कौन से हैं और रानी कौन है और ये शत्रु कौन है, सैनिक कौन है, ये सब उन्होंने बताया है। इसको गहराई में पढ़ के सांख्य योग पता हो जाएगा, शरीर क्या है, आत्मा क्या है इत्यादि। हरे कृष्णा। हाँ, अधिरस्तु।
गीता में महाराज वो श्लोक है ना, मतलब न बुद्धि भेदम जाने का ज्ञान, तो उसमें वहां पर कहते हैं कि मतलब कि वेदे जो सर्वराम वेद, मतलब सारे वेदों में जो भी लिखा है वो सब मैं ही हूँ, सब ऐसे कहते हैं भगवान। तो अभी मतलब तो अभी कर्मकांड के लिए तो मतलब जो हम जाएंगे बाहर तो सब वही करते हैं, कर्मकांड करते सब लोग।
नहीं, लोग कर्मकांड भी नहीं करते, केवल पशु हत्या करते हैं। राजा प्राचीन परिषद कम से कम विधि अनुसार कर रहे थे। आजकल जो लोग करते हैं विधियों को भी मानते नहीं है, ऐसे ही मार डालते हैं और खाते हैं। तो कर्मकांड में रहने से लाभ ये है कि कम से कम वो वेदों के आदेशों का पालन कर रहा है, और यदि वो सही तरह से पालन करता है तो एक न एक दिन अनेक 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 जन्मों के बाद धीरे 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 से उसकी प्रगति होगी और वो सोचेगा कि अरे क्यों ये सब मैं करूं, ये सब मुझे छोड़ना चाहिए, मुझे कुछ शरीर के संसार के परे कुछ ढूंढना चाहिए। तब वो ज्ञान कांड के रास्ते में आ जाएगा और आगे चल के फिर भक्ति के रास्ते पर आ जाएगा। तो ये बहुत लंबी यात्रा है, अनेक जन्म लग जाते हैं इसके लिए। इसलिए नारद मुनि नहीं चाहते हैं कि राजा प्राचीन परिषद को इतने जन्म लग जाए, वो सोचते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र ये भगवान की भक्ति करने लग जाए।
मतलब लेकिन मतलब उनको वहाँ बताया गया कि जो लोग स्कम कर रहे हैं तो उनको रोक रोकिए मत, उनको तो ऐसे बोल रहे हैं, मतलब न बुद्धि वेदम जने का ज्ञान, तो उनको तो उनको रोकिए मत, क्योंकि मतलब उनको उस क्रम में लगाए ताकि वो थोड़े ऊपर उठे भक्ति में, क्रम से आगे बढ़े। तो अभी तो जो लोग कर रहे तो उनको हम मतलब कैसे
हाँ, मतलब जो अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, इधर उधर कुछ करते हैं, उनको ज़्यादा विचलित मत करो। परंतु चैतन्य महाप्रभु की कृपा ऐसी है, और हम भागवत में भी देखते हैं नारद मुनि गए ना राजा प्राचीन परिषद के पास, सबके पास जाते हैं, तो विचलित नहीं करना चाहिए उनको, परंतु थोड़ा ज्ञान देने के लिए कोई आपत्ति नहीं है। यदि वो सुनना चाहते हैं तो वो सुन लेंगे, नहीं सुनेंगे तो फिर ठीक है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, सही समय पर परमात्मा उनके हृदय में उनको मार्गदर्शन देंगे।
कुछ लोग ये श्लोका लेके ना हम किंकर ना रिनिश्च राजन देव ऋषि भूतापन्न पित्र नाम, तो भक्ति में भक्ति का पथ में आया है तो तुरंत ये जो भी श्राद्ध हो या दूसरा कोई भी पूजा हो बंद कर देते हैं, तो भक्ति के पथ में आने वाला सब लोग ये बंद कर सकते हैं ऐसा?
जो गृहस्थ आश्रम में है उनको ये सब पालन करना चाहिए श्राद्ध आदि, परंतु कृष्णमय ढंग से करना चाहिए। भक्तों को बुलाना, प्रसाद वितरण करना, कीर्तन करना, कथा करना, अपने पूर्वजों को कृष्ण प्रसाद अर्पण करना, उसको कृष्णमय पद्धति से बना सकते हैं।
तेच
कर्मकांडामधूनच येत ते, की ज्यांना दारू वगैरे पियायची इच्छा आहे त्यांच्यासाठी पण एक विधी आहे की याप्रमाणे तुम्ही करा, तुम्ही असं करा, या देवीना तुम्ही अर्पण करा, त्याच्यानंतर तुम्ही घ्या। ज्यांना मांसाहार करायची खूप इच्छा आहे त्यांच्यासाठी पण एक मार्ग आहे, तुम्ही असं असं करून चंडी देवीना तुम्ही अर्पण करा, मग तुम्ही घ्या। असं असं तुम्ही मंत्रोच्चारण करा, उपासना करा, मग तुम्ही घ्या। एक पद्धती असते त्याच्यासाठी। आणि ह्याचा अर्थ हे नव्हे की भगवंतांची इच्छा अशी आहे की सगळ्यांनी हे सगळं केलं पाहिजे, पण हे का असे नियम आहेत कर्मकांडामध्ये? जर हे वर्जित आहे, हे मोठं पाप आहे, तर कर्मकांडी शास्त्रामध्ये पण असं का म्हटलंय? कारण भगवंतांना माहीत आहे की असे अनेक लोक आहेत जे एवढे आसक्त आहेत की ते करणारच आहेत। कितीही भगवंतांनी सांगितलं तरी तुम्ही करू नका, दारू पिऊ नका, मांसाहार करू नका, ते करतील। तर भगवंत करुणामय आहेत, तर त्यांनी एक मार्ग काढले, ठीक आहे तुम्ही करणारच आहेत ना, तर ह्या पद्धतीने करा, मी जसं सांगतो तसं करा, आणि तसं जर तुम्ही केलं तर हळूहळू हळूहळू हळू अनेक जन्मानंतर तुम्ही प्रगती करून करून या परिस्थितीवर, या स्तरावर पोहोचणार की ज्या स्थितीमध्ये तुम्ही विचार करणार आता नको आणि हे काम एवढं करायचं, पशूची हत्या का करायची, उलट माझा मला पण किती त्रास होणार नंतर, त्यांना पण त्रास, मला पण त्रास। तर बुद्धी बरोबर शुद्ध होऊन जाते, त्यावेळी तो मग आध्यात्मिक विषयामध्ये रुची घेतो। हा, तर हे कर्मकांडी पद्धती आहे। परंतु आता जे बळी चढवतात त्याच्यामध्ये जास्त करून काही पद्धतीचा स्वीकार करत नाहीत। एक प्रथा राहिली आहे जुनी, पण ते काहीतरी एक प्रतिशत शिल्लक राहिली आहे ती, ते काटेकोरपणे ते शास्त्रांचं नियमाचं पालन करत नाही। ते काहीतरी कोणी ऐकलंय आम्ही केलं पाहिजे, कापलं पाहिजे, म्हणून कापतात सगळे। आसक्त जास्त झाले, त्याच्याशिवाय त्यांना होतच नाही। याने वाटते कि असं जीवन जगून काय उपयोग, खायला पियले नाही असेल तर नाही जगलेलं बरं. त्यांना हवंयच ते. प्रभुपाद एक सांगायची गोष्टी की एकदा ते एक दारोडा माणूस होता, तर एक साधू होते त्यांच्याकडे गेले. ते म्हटलं, अरे एवढं का दारू पिता आणि मांसाहार करता, आणि तुम्हाला माहीत नाही का याचा परिणाम काय होणार, काय होणार, तुम्ही नरकमध्ये जाणार, तर नरकमध्ये काय असतं, नरकमध्ये असं 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 तुम्हाला सगळं दुःख कष्ट मिळेल तुम्हाला. अरे तुम्ही फक्त मला सांगता, माझा भाऊ आहे तो पण घेतो, तो पण नरकमध्ये जाईल. माझा चुलत भाऊ आहे तो घेतो, तो पण जाईल नरकामध्ये. माझे वडील आहेत ते पण घेतात, ते पण जाईल तिकडे. आणि माझा तो दोस्त आहे तिकडे, तो पण घेतो, तो पण जाईल. आणि माझा मित्र आहे तो पण घेतो, तो पण जाईल. अरे मग मजा आहे ना, नरकमध्ये जाऊन आम्ही सगळं तिकडेच आनंद करू. जे आम्ही इकडे करत आहे तिकडे जाऊन आम्ही एकत्र राहून आम्ही सगळं मजा करू. तर जे कोणी हे सगळं करतात, सगळं जसं आम्ही श्लोक मध्ये ऐकलं, नरका त्यांचं नरकाची गती आहे. आणि लोकांना हे सगळं माहीत नाहीये, त्यामुळे ते सगळं न विचार करता हे सगळं करतात.
ग्रहस्थामध्ये भौतिकवादीमध्ये राहतोय आपण, जर आता घरगुतीमध्ये एक जर व्यक्ती जर कृष्ण भावनामध्ये असेल, तर बाकी जर प्रथा जे असतात घरगुती, ते जर कसं करायचं, मेंटेन करायचं.
हळूहळू हळूहळू करून घरामध्ये जे इतर लोक आहेत त्यांना समजवलं पाहिजे. हां, जास्त भांडण करायचं नाही, पण समजवायचं प्रेमाने सगळ्यांना की बघा किती पाप आहे, किती कष्ट होणार, आणि भगवंतांनी सांगितले असं आम्ही करायचं नाही, म्हणून इतर प्राणींना त्रास नाही द्यायचा, आणि दारू घेत वगैरे खाऊन मग आमचं पूर्ण आरोग्य पण खराब होत आहे, आणि मोठं पाप आहे, नाही केलं पाहिजे असं समजायला पाहिजे त्यांना. आणि दारू घेऊन काय करतात लोक, घरामध्ये येऊन भांडण करतात, होय की नाही, दंगा करतात. विपरीत परिणाम खूप होत आहे. घरामध्ये येऊन मग हात उचलतात लोकांवर, बायकोवर, मुलावर. होतंय की नाही असं?
खूप
खूप होतंय ना. मग असं केलं तर शांती होईल का? आणि मग दारू दारू पिऊन दिवसभर पडलेले असतात. काम करायचं नाही, काय नाही. माताजी लोकांनी काम करायचं, परिश्रम करायचं, हे लोक दारू पिऊन पडलेले असतात. किती किती दुःखाची गोष्टी आहे, किती काय म्हणतात, भयंकर एक लाजाची गोष्टी. लाज वाटलं पाहिजे त्यांना, होय की नाही. सगळं भोज घरचे माताजी लोकांवर सोडायचं, स्वतः दारू पिऊन गटरामध्ये पडत राहायचं. असं होतंय की नाही. त्यामुळे ह्याची एक क्रांती झाली पाहिजे, आणि लोकांना हे कळवलं पाहिजे की हे सगळं नाही करायचं. ह्याच्याने किती नुकसान होतंय, सगळ्यांना किती नुकसान होतंय, आणि मुलांवर काय परिणाम होतो ह्याचा. खेड्यामध्ये फार मोठी समस्या आहे, फक्त खेड्यामध्ये नव्हे, शहरामध्ये पण, पण खास करून खेड्यामध्ये. अनेक खेड्यामध्ये मी पण गेलो, आदिवासी इलाकामध्ये पण किती त्रास. आदिवासी इलाके, एवढे आदिवासी इलाक्यामध्ये मी गेलो आहे, एक पण पुरुष काम करत नाही. दिवसभर पितात दारू, जुगार खेळतात, पडलेले असतात तिकडे. घरामध्ये माताजी लोक आहेत ते सगळं घर सांभाळतात, स्वयंपाक करणे आणि मुलांना सांभाळणे, पैसे गोळा करणे, सगळं काय ते लोक करतात. हे पुरुष दारू पिऊन दंगा करतात आणि पैसे पाहिजे म्हणून आणि हात उचलतात आणि पैसे दे म्हणून. मला किती निर्लज्ज व्यक्ती आहेत ते. हे सगळं प्रथा चालू आहे. त्यांना वाटतं की आम्ही पुरुष आहे, पुरुषत्व म्हणजे असंच, जोपर्यंत आम्ही दारू पीत नाही आम्ही पुरुष नाही आहे. हे कुठची विचित्र विचारधारा आहे. त्यामुळे खेड्यामध्ये याचा फार आम्ही प्रचार केला पाहिजे. आता सगळ्यांनी स्वाभिमानी राहिलं पाहिजे, सगळ्यांनी भगवंतांच्या मार्गावर चाललं पाहिजे. बरोबर आहे की नाही? करणार ना खेड्यामध्ये? हा, कुठच्या गावामध्ये राहत?
तुडिये.
हा,
तुडिये.
तुडिये, तुडिये म्हणजे कुठे झालं ते?
महाराष्ट्र.
असं गावामध्ये होत की नाही? पुरुष लोक दारू पिऊन भरपूर असत ना, असं घरामध्ये येऊन भांडण करतात.
गावामध्ये जी दुकान होती ना ती पूर्णपणे बंद झाली. 2 वर्ष झाली इलेक्शन घेऊन महिलांनी पूर्णपणे बंद केले ते
दारूचं दुकान,
सगळं बंद करून दिले. पण आता काय झालं, एक्सपोर्ट जे बाहेर येते ते मोठ्या प्रमाणावर होते, कारण ते कमी किमतीमध्ये जाते ना. पहिल्यापेक्षा जास्त मोठ्या प्रमाणात चालू आहे लोक. फार आणि गैरसमज काय झाला माहिती नाही, तर नवीन मी कृष्ण भावना होत आहे माझ्याकडे बोलून लोक काय बोलतात, तो हरिबोल झालास. ऍक्च्युली त्यांना म्हणजे हरिबोल म्हणजे त्यांना असं वेगळं काहीतरी वाटतंय. ऍक्च्युली त्यांना माहित नसतं की कृष्ण भगवान, भगवंत जे काय याच्याविषयी ज्ञानच नाही ना.
त्यामुळे त्यांना समजवलं पाहिजे. प्रचारासाठी एक संधी आहे. सगळ्यांना बसवायचं, बसा आता तुम्ही इकडे 2 मिनिट दारू सोडा आणि बसा. जे काय मी बोलत आहे आणि सगळ्यांना समजवलं पाहिजे. आता तुकाराम महाराजांनी नाही म्हटलं का हरिमुखे म्हणावं, तेच हरी बोल आहे. बोल म्हणजे काय? बोलायचं. हरिमुखे म्हणा आणि हरी बोल एकच आहे ना गोष्टी. मग त्यांना समजवायचं. प्रचारची एक संधी आहे ती. एक आंदोलन करायचं थोडीये गावामध्ये दारू मुक्त गाव.
हा, 5 वर्षाच्या माग मी पंचायत इलेक्शन मध्ये निवडून आणले होते. त्यावेळी मग ते बाई लोक दारू बंद कर, दारू बंद करून माझ्याकडे आले. पण गावामध्ये दारू बंद करायला मी पेंडॉल वगैरे घालून कार्यक्रम केलो. केल्यानंतर ते पोलीस डिपार्टमेंटचे येऊन भाषण केले, एकटा कोणतं बी मिळला तर तुम्हाला लई मारतो, तुम्हाला आग्रह करतो, तसं करतो. मग 15 दिवस झाल्यानंतर तीच लोक पैसे खाऊन सोडत होते आणि चालू करतात. मग असं 2 वर्ष मी फाईट केलो. मग दारू बंद झाली गावामध्ये, माझ्या गावचं बघून दुसऱ्या गावामध्ये बी बंद केले. केल्यानंतर मग आमच्या शेतामध्ये पीक असताना त्याला काठी लावायचं, ती लोक विकणार आहे. आणि त्याच्यानंतर माझ्यावर एक अस्पृश्य बाई हे करून केस केल्यानी 1880 माझ्या. मग त्याच्यानंतर ते CPI तर नव्हते ना, त्यांनी वळाकले आम्ही हे केस घेणार नाही, तो लोकांसाठी करायला, जगासाठी करायला, हे तुम्ही काही सांगू नका. आणि त्या बाईला बलवा म्हटले. त्या बाईला बलवानंतर त्या बाईला विचारले आणि तो काय केला तो आम्ही काही नाही, त्याची काय चूक नाही, तो त्याच्या घरी बी जाऊ नाही आम्ही, तो बी आमचा घर भटला नाही आणि माझा लेखसखा आहे तो, आणि काही म्हटला ना म्हणून सगळ्यांचे घर सांगते. मग असं करतात ना, असं करत्यावेळी ते दुःख वाटतंय आम्हाला. ते
होय, हीच दुःखद परिस्थिती आमच्या खेड्यामध्ये शहरामध्ये आहे. तर आम्ही खूप आमचं प्रचार भक्तीचं वाढवायला पाहिजे. आणि भक्तांची संख्या जर वाढली खेड्यामध्ये आणि सगळं कीर्तन वगैरे करत राहिले, सकाळी संध्याकाळी खेड्यामध्ये सगळं सत्संग चालत असलं, उत्सव चालत असले, तर हळूहळू लोकांची वृत्ती बदलणार. असे कितीतरी उदाहरण आहेत की जे मोठेचे मोठे पापी लोक होते ते भक्त झाले. त्यामुळे असं पण शक्य आहे. आणि कधी कधी काय असतं, आता मी असं सांगितलं म्हणून सांगू नका कोणाला, पण जर जास्त कोणी त्रास असं करत असेल की नाही, गपचूप चार पाच लोकांनी बोलवून टाकायचं त्याला. कधी कधी ह्याच्याशिवाय दुसरं काही चालत नाही.
मग घेतले ते
सिप्लिन, त्यांनी जास्त काही केलं तर त्यांना माहित असलं पाहिजे. आम्ही सुरू केलं की खेड्याचे लोक येऊन बोलवणार म्हणून. हिंदी मध्ये म्हण आहे, जो बातो से नाही माने वो लातो से माने, असं काहीतरी आहे ना. काय ते
बातो का भूल लातो
से नाही
बातो
लातो
के भूत बातो से नाही
माने. हा, लातो के भूत बातो से नाही माने. प्रेमाने सांगू जे ऐकत नाहीत त्यांच्यासाठी दुसरा मार्ग आहे. पण मी असं बोललो म्हणून सांगायचं नाही, तर माझ्या बरोबर भांडण कळा येणार. जे असे करतात ना, त्रास देतात ना, पीक जळून टाकतात, हे करतात ते करतात, सगळ्यांना माहित असतं कोण करत आहे म्हणून. त्यामुळे जे चांगल्या मार्गावर चालणारे लोक आहेत की नाही, त्यांची एकी असली पाहिजे. एकी असली पाहिजे त्यांची, मिळून सगळं बोडून टाकलं पाहिजे, मग ते गप्प बसतील सगळं घाबरून. त्यामुळे आम्ही थोडं भक्तीचा प्रचार वगैरे जास्त केलं पाहिजे. ठीक आहे ना. मोठं प्रकरण, मोठी समस्या आहे. फक्त इकडे महाराष्ट्र कर्नाटक मध्ये नव्हे, प्रत्येक भारतामध्ये, पूर्ण बिहारमध्ये पण तसंच झालं की सगळ्या जे बायका आहे, माताजी लोक आहेत, त्यांनी उडस जोर करून तिकडे मुख्यमंत्रीनी पण सगळं बंदी टाकली. मग दारूवर खेड्यामध्ये असंच व्हायचं, दारू पिऊन येऊन सगळ्यांना दंगा करायचं घरी, आणि पैसे कमवायचे नाही, फक्त पैसे खर्च करायचे.
तरी महाराज ते काजूचे बागवाले बी दारू काढून घरी मिळूच नसली तरी ती दारू काढतात, घरामध्ये ठेवतात, केनं पुरून ठेवतात, परत पितातच. जरी जरी समजा गव्हर्नमेंटच्या कंपन्याने नाही दिले तरी बी घरगुती काढतातच काजूच्या सीजनमध्ये.
त्यामुळे त्यांना भगवंताची भक्तीचा प्रचार खूप केलं पाहिजे, त्यांना या मार्गावर आणलं पाहिजे. वेगळे वेगळे प्रकरण, फक्त काजूचे नव्हे, ताडीचं पण करतात, त्याचे त्याचे वेगळे वेगळे आहेत. ठीक आहे ना. हरे कृष्णा. हे बोलायचं बोलायचं नाही, आम्ही असं बोललो म्हणून. हरे कृष्णा. चला, पण खरोखर समस्या आहे आमची. आणि तुम्ही सगळं खेड्यामध्ये राहता, तुम्ही सगळं केलं पाहिजे. घट्ट व्हा तुम्ही सगळ्यांनी, करा. एकी असली पाहिजे त्यामध्ये. बरोबर आहे ना. अरे कृष्णा.